नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत सामग्री पर, कह सकते हैं, एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित एक अद्भुत पुस्तक है, जीवन देवता की साधना आराधना। ये उनके क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है जो उन्होंने 1988 से 90 के बीच लिखी थी। और आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेव ने स्वयं इस साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा था और आग्रह भी किया था कि ये जन जन तक पहुँचे। तो चलिए आज इस महत्वपूर्ण पुस्तक के सार को समझने का प्रयास करते हैं। इसका मुख्य विषय क्या है आखिर?
जी देखिए, इसका जो केंद्रीय विचार है वो सच में क्रांतिकारी है।
जी
मतलब ईश्वर की खोज कहीं बाहर मंदिरों या पहाड़ों में नहीं करनी है, बल्कि अपने ही जीवन को, हाँ अपने जीवन को ही देवता मानकर उसकी साधना और आराधना करनी है।
जीवन को ही देवता मानना,
हाँ हाँ
ये केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, असल में ये व्यक्तित्व के, मतलब पूरे पर्सनैलिटी के समग्र परिष्कार पर जोर देता है।
समग्र परिष्कार? पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि ईश्वर जो है वो न्यायनिष्ठ है और वो व्यक्तित्व में आदर्शवादिता से प्रसन्न होता है, ना कि केवल भेंट, पूजा या चढ़ावे से। सच्ची साधना क्या है? वो है अपने भीतर के जो विकार हैं, जो कमियां हैं, उनको हटाना और संस्कारों को, अच्छी आदतों को उभारना। इसी को कहते हैं जीवन साधना, मतलब आत्म परिष्कार।
अच्छा, आत्म परिष्कार। तो ये जीवन को देवता मानकर साधना, ये काम कैसे करता है? इसके कुछ पहलू होंगे?
हाँ हाँ बिल्कुल, इसके तीन मुख्य पहलू बताए गए हैं, उपासना, साधना और आराधना।
उपासना, साधना, आराधना, ये शब्द सुने तो बहुत हैं, पर इस संदर्भ में इनका क्या अर्थ है, थोड़ा समझाएंगे?
जरूर। देखिए, उपासना का सरल सा अर्थ है ईश्वर के निकट बैठना, यानी अपने चिंतन में, अपनी सोच में उत्कृष्टता लाना, अच्छी ऊंची आदर्शवादी भावनाओं का समावेश करना, रोज थोड़ा समय इसके लिए निकालना।
विचारों को ऊंचा उठाना।
बिल्कुल। फिर है साधना। साधना यानी जीवन साधना, या कह लीजिए चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। इसमें संयम बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रियों पर संयम, समय का संयम, अर्थ यानी पैसे का संयम और विचारों का संयम, साथ ही अनुशासन और सद्गुणों का विकास, ये सब साधना में आता है।
अच्छा, और तीसरा था आराधना।
हाँ, आराधना। आराधना यानी पुण्य परमार्थ और लोक मंगल के कार्य, सेवा। पर सिर्फ दान पुण्य नहीं, बल्कि पूरे संसार को, हर प्राणी को विराट ब्रह्म का ही रूप मानकर उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो ये तीनों, उपासना, साधना और आराधना, ये मिलकर ही जीवन को साधने का, उसे बेहतर बनाने का मार्ग बनाते हैं।
ये सुनने में तो बहुत बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन यकीनन इस रास्ते पर चलने में बाधाएं भी तो आती होंगी, रुकावटें।
हाँ बिल्कुल आती हैं, और पूज्य गुरुदेव ने तीन प्रमुख भावबंधन बताए हैं, मतलब तीन बड़ी रुकावटें, लोभ, मोह और अहंकार। ये ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को नीचे गिराती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं।
लोभ, मोह, अहंकार, थोड़ा और बताएं इनके बारे में।
देखिए, लोभ है जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा, अंधी दौड़। इसके लिए फिर व्यक्ति सही गलत नहीं देखता। इससे बचने का तरीका है सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना, अपनी जरूरतों को सीमित रखना।
और मोह, वो तो बड़ा स्वाभाविक सा लगता है, अपने परिवार से, बच्चों से लगाव होना।
देखिए, लगाव होना बुरा नहीं है, पर मोह का अर्थ है उस लगाव में बुरी तरह जकड़ जाना, अपनेपन के दायरे को बहुत छोटा कर लेना, बस मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस संकीर्णता से, इस छोटे दायरे से बाहर निकलना होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगानी होगी कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है।
पूरी दुनिया को अपना समझना, ये तो बहुत ऊंची बात है।
और अहंकार?
अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है,
वो दिखावा भी है, दूसरों को अपने से छोटा समझना भी है। इसे त्याग कर विनयशीलता, विनम्रता अपनाना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों, लोभ, मोह और अहंकार, इनको पहचानना और इनसे पीछा छुड़ाना, ये आत्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है।
ठीक है, तो इन बाधाओं को समझकर रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक रूप से इसे कैसे उतारें? क्या पूज्य गुरुदेव ने कोई खास विधि, कोई तरीका बताया है?
हाँ बिल्कुल बताया है, उन्होंने प्रज्ञा योग नाम की एक बहुत ही व्यवहारिक साधना विधि बताई है। इसमें रोज करने वाले और कुछ साप्ताहिक या अर्धवार्षिक अभ्यास भी शामिल हैं।
अच्छा, रोज करने वाले अभ्यास कौन से हैं?
रोज के लिए चार बातें मुख्य हैं। पहला, सुबह उठते ही आत्मबोध, मतलब ये सोचना, ये महसूस करना कि आज एक नया जन्म मिला है, एक नया दिन मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, कुछ अच्छा करना है। दूसरा, रात को सोते समय तत्वबोध। जैसे एक व्यापारी दिन भर के लाभ हानि का हिसाब करता है, वैसे ही हमें अपने दिन भर के कामों की समीक्षा करनी है। क्या अच्छा किया, कहाँ चूक हुई, ताकि अगले दिन उसे सुधार सकें।
ये तो बहुत अच्छा तरीका है रोज खुद को जांचने का। और बाकी दो?
तीसरा है नियत समय पर भजन, यानी ईश्वर का ध्यान, जप या कोई भी तरीका जिससे मन एकाग्र हो और शांत हो। और चौथा है दिन में जब भी समय मिले मनन, यानी आत्मसमीक्षा, खासतौर पर अपने संयम की कसौटी पर खुद को कसना। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, इनमें कहाँ कमी रही इसे देखना और सुधारना। और वो साप्ताहिक या अर्धवार्षिक अभ्यास,
हाँ, वो साधना में एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी भरने के लिए है। जैसे कभी उपवास रखना, कुछ समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन रखना, इनसे इंद्रियों को आराम मिलता है और संकल्प शक्ति मजबूत होती है। तो मूल रूप से साधना, स्वाध्याय यानी अच्छा साहित्य पढ़ना, संयम और सेवा, ये चार स्तंभ माने गए हैं इस मार्ग के।
स्वाध्याय, स्वाध्याय, संयम और सेवा, बहुत स्पष्ट। आपने आराधना यानी सेवा की बात की थी, तो सेवा का सबसे अच्छा रूप क्या माना गया है इस पुस्तक में?
ज्ञान यज्ञ।
हाँ, यानी सद्ज्ञान का प्रसार, अच्छे सृजनात्मक विचारों को फैलाना। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि समाज में कोई भी स्थायी टिकाऊ परिवर्तन लाना है तो वो विचारों की क्रांति से ही आएगा। लोगों की सोच बदलेगी तभी व्यवहार बदलेगा। तो लोकमानस का परिष्कार करना, लोगों में सत प्रवृत्तियों को, अच्छी आदतों को बढ़ाना, यही सच्ची आराधना है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने अपने इस क्रांतिधर्मी साहित्य को, जैसा आपने शुरू में कहा, अपना ज्ञान शरीर माना और इसे ही घर घर पहुंचाने को, ज्ञान यज्ञ को, सबसे ऊंची सेवा बताया।
अच्छा, इसीलिए वो चाहते थे कि ये साहित्य सब तक पहुंचे।
जी बिल्कुल, सस्ते मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध कराना, विचार गोष्ठियां करना, ये सब ज्ञान यज्ञ के ही अंग हैं।
तो संक्षेप में कहें तो ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि अध्यात्म कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि अपने जीवन को ही साधना का केंद्र मानना है। आत्म परिष्कार, चरित्र निर्माण और निस्वार्थ सेवा, विशेषकर ज्ञान के माध्यम से सेवा, यही सच्ची ईश्वर आराधना है।
बिल्कुल सही कहा आपने, ये बाहर खोजने की बजाय अपने भीतर मुड़ने का आवाहन है, अपने जीवन को ही संवार कर ऊंचा उठाने की प्रेरणा है।
सच में बहुत गहरी बात है। और सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने छोटे छोटे कामों में, अपने विचारों में इस जीवन देवता की साधना को कैसे उतार सकते हैं। ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे बदलकर हम आज ही इस रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं? ये प्रश्न मैं हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी।